ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
ओम शांति। सभी कहेंगे, माताएं भी, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो और प्रभु प्रिय आत्माएं हो, जो इतना शांति से राजयोग के विषय में और अन्य विषयों में के बारे में सुन रहे हो, तो सुबह से लेकर शाम तक आपने बहुत कुछ सुना। अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? वैसे तो आप में से काफी सारे भाई बहने ऐसे होंगे जो कुछ समय से सेवा केंद्रों पर जाते रहते हैं। जो सेवा केंद्रों पर जाते रहते हैं कुछ समय से, वे हाथ उठाएं। जो कोई कार्यक्रम में ही जाते हैं वे हाथ उठाएं। और जो कोई केंद्र पर नहीं गए, कोई कार्यक्रम पर भी नहीं गए, सीधा यहाँ ही पहुंचे हैं, वे हाथ उठाएं। अच्छा, तो मैं उन भाई बहनों को भी आश्वासन दिलाना चाहती हूँ जो कोई भी कार्यक्रम में पहले कहीं गए नहीं है किसी सेवा केंद्र पर, और सीधा यहाँ ही आए हैं, तो ये मत सोचें कि औरों को तो ज्यादा मालूम होगा, हमें कम, क्योंकि यहाँ इन दो तीन दिन में आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, और जो उन्होंने सुना उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ सुनने को मिल रहा है। इसीलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि हमने तो अब तक कुछ नहीं सुना, सीधा यहाँ ही आए हैं, आपको उतना ही मिलेगा। तो आज सुबह से राजयोग के विषय में दो सत्र चले। एक था स्वयं की पहचान, जिसमें आपको योगी की पहचान दी गई। अगर आपसे कोई पूछे अभी आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देंगे? आप कौन हैं? कौन है? आत्मा है। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कौन है, तो उसका भी आपको परिचय मिला, अर्थात योगी का परिचय मिला या साधक का परिचय मिला, और फिर योगेश्वर या साध्य, जिससे मुझे संबंध जोड़ना है, जिसको पाना है, जिसको अनुभव करना है, उसका भी परिचय मिला। अब अभी का जो विषय हम लेंगे कि दोनों का मिलन कैसे हो, क्योंकि योग की परिभाषा कोई लंबी चौड़ी नहीं है। अगर हम योग की परिभाषा लेते हैं तो बताया होगा कि संस्कृत के युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, और आज उसको योगा कह करके उसका अपभ्रंश कर लिया है योगा, और योगा के लिए लोग समझते हैं कुछ आसनों का ही दूसरा नाम है। आज मैं योगा करने गया, कुछ आसन करने गया। योगा के नाम पर कई योगाश्रम भी खुले हैं जहां शारीरिक आसन सिखाए जाते हैं, पर योग का अर्थ कोई आसन नहीं है। योग तो बहुत सरल शब्द है समझना, जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग। योग और वियोग ये जीवन के दो अंग हैं। आप जहां से आए हैं वहां से वियोग हुआ और यहां से योग हुआ, फिर दो तीन दिन के बाद वापस जाएंगे तो यहां से भी योग होगा, वहां से योग होगा। इसलिए योग वियोग ये तो जीवन के दो अंग हैं, जिससे बिछड़ते हैं उसे वियोग होता है और जिससे मिलते हैं उसे योग होता है। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी प्रकार का जोड़ या मिलन। हम किसको याद करते हैं वो भी एक योग है। मैं किसको अगर बहुत याद करूं और वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है, मैंने याद किया और वो पहुंच गया, तो मैं यही कहूंगी क्या योग था मेरा, आपको मैंने कितना याद किया, देखो आप आ गए, ये भी मेरा योग था। तो मन से आपने उसको बहुत याद किया और वो खींचा हुआ चला आया। तो किसी भी की याद ये भी एक योग है। दो व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं वो भी योग है, उसको कहते हैं सहयोग। कोई बात हम सोचते हैं और वो बात हो जाती है उसको कहते हैं संयोग। हमने सोचा और हो गया, ये संयोग है। कैसे हो गया, सोचा ही था और हो भी गया संयोगवश। तो योग सहयोग संयोग प्रयोग ये योग से संबंधित शब्द हैं, परंतु इनको तीन स्तर से देख सकते हैं योग शब्द को। तो वो आपको थोड़ा बताया होगा सुबह, योग के तीन स्तर है, एक है भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। तो भौतिक स्तर है वस्तुओं का जोड़। हम बिजली घर से योग किया तो बिजली हमें मिली, तार को जोड़ा बिजली घर की तार से तो यहां हमें बिजली मिली। रेडियो स्टेशन से ट्यूनिंग की तो रेडियो स्टेशन की आवाज हमारे रेडियो पर सुनाई दी। तो ये एक भौतिक रूप का योग है, वस्तुओं का आपस में योग होता है, मिलन होता है, और जिससे मिलन होता है उसकी अनुभूति होती है। दूध में चीनी मिलाई तो चीनी का गुण दूध में आ जाता है और दूध मीठा हो जाता है। और मानसिक रूप से भी योग है, आप एक सुखद घटना को याद करते हो तो तुरंत आपको सुख की महसूसता होती है, दुखद घटना को याद करते हो दुख की महसूसता होती है। जैसी बात को आप याद करते हो वैसी अनुभूति उसी समय होने लगती है। परंतु जब हम इस योग शब्द को आध्यात्मिक रूप से लेते हैं तो इसका बहुत सुंदर अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और क्योंकि ये मिलन सबसे ऊंचा है, उस सर्वोच्च से मिलन है, जिस सर्वोच्च के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो उस ऊंचे से ऊंचे के साथ योग है, जिनसे कोई ऊंचा नहीं इस संसार में। इसलिए इसको हम राजयोग कहते हैं, क्योंकि उस सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा से आत्मा का मिलन है, जिनसे कोई ऊंचा है ही नहीं। ये सबसे ऊंचा मिलन है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलते हैं वो मिलन साधारण मिलन है, पर आत्मा का परमात्मा से मिलन ये सबसे श्रेष्ठ मिलन है। इसलिए इसको हम राजयोग कहते हैं। परंतु इस मिलन के लिए जो विधि है वो विधि भी बहुत ऊंची है। कई समझते हैं कि पहले शरीर को कष्ट देना पड़ेगा तब जाकर हम परमात्मा के साथ मिलन कर सकेंगे, लेकिन कौन ऐसा पिता होगा जो ये चाहेगा कि मेरे बच्चे कष्ट सहन करके मेरे से मिले। अगर बच्चा गिर भी जाएगा तो पिता झुक करके उस बच्चे को उठा लेगा, ये नहीं कि रोता रहे और अपने कष्ट से मेरे से मिले, नहीं, वो खुद दौड़ेगा पिता और उसको उठा लेगा बच्चा गिरा तो। बच्चा तो पिता तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन पिता दौड़ करके उस बच्चे को उठा लेगा। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कष्ट मिले, तो परमात्मा क्यों चाहेगा कि कष्ट करके मेरे से मिलो? नहीं। इसलिए जो सहज से सहज विधि है परमात्म मिलन की, ये राजयोग में सिखाई जाती है। एक रॉयल प्रकार का योग, जैसे राजा लोग रॉयल्टी से रहते हैं, कोई कष्ट वाला जीवन नहीं जीते, तो राजयोग वो रॉयल योग है और वो सबसे श्रेष्ठ और सरल से सरल विधि है। वो आज आपको हम बताएंगे। और फिर इससे जो प्राप्ति है वो भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कई प्रकार की प्राप्ति मनुष्य चाहते हैं। पर चाहे किसी को धन की प्राप्ति हो जाए, कोई मान की, यश की, महिमा की, कोई मर्तबे की, लेकिन फिर भी यही चाहेगा कि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, परंतु अभी शांति चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति शांति की प्राप्ति है, सबसे ऊंची प्राप्ति खुशी की प्राप्ति है, सबसे ऊंची प्राप्ति शक्ति की प्राप्ति है। तो ये जो आत्मा के निजी गुण हैं, ये परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। एक तो आत्मा के गुण है ही है, लेकिन आज आत्मा अपने आप को भी भूल चुकी है, इसीलिए वो अनुभव नहीं कर पा रही है। और जिस परम स्रोत परमात्मा से वो अनुभव कर सकेगी, उसको भी नहीं जानती है। इसीलिए आज सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं, सुख नहीं, खुशी नहीं, प्यार नहीं, शक्ति नहीं, और हम भिखारी की तरह भगवान से ये मांगते रहते, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भगवान से शक्ति मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, शांति मांगते हैं, तो भिखारी की तरह मांगते हैं। और परिणाम ये निकला है कि भिखारी की तरह मांगने के कारण हमें भीख भी नहीं मिलती। इसीलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हे भगवान, शांति दो, शांति दो, शांति देवा, शांति देवा कहते कहते शांति से कोसों दूर हो गए हैं। और भिखारी बनकर बूंद के ही प्यासी रह गए। हे भगवान, तू तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो भगवान कहते, बूंद के प्यासी क्यों बनते हो? कोई सागर के किनारे जाकर ये कहे कि सागर मुझे एक बूंद ही दो, सागर कहेगा कितना मूर्ख है ये, पूरा सागर खुला है, जितना चाहिए लो ना, बूंद क्यों मांग रहे हो? तो परमात्मा तो दाता है। जिस दाता के लिए कहते हैं कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, देने वाला थकता नहीं, लेने वाले थक सकते हैं, पर लेने की कला आनी चाहिए। अगर सूरज की किरणें हमारे घर में मकान में आ रही है, पर हमने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी है, तो कैसे मिलेगी वो किरणें? खोलनी पड़ेगी। तो ये राजयोग वो आत्मा के पट खोलता है, तीसरा नेत्र हमें प्रदान करता है, जिसके द्वारा आत्मा वापस अपनी खोई हुई शक्तियों को अनुभव करने लगती है। तो इसीलिए राजयोग को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई समझते हैं राजयोग माना कुछ मेडिटेशन हमें करना है, क्योंकि मेडिटेशन के नाम पर भी आज बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत विचार हैं, इतने विचारधाराएं हैं जो बात मत पूछो। मेडिटेशन सीखने जाते हैं, डॉक्टर ने कहा मेडिटेशन सीखो, किसी को हार्ट अटैक आया बच गया, तो डॉक्टर कहेगा अभी अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, खान पान चेंज करो और मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन से आपको शांति मिलेगी। अब कई प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। कोई समझते हैं कि मेडिटेशन माना अपने विचारों को शून्य कर देना, कुछ भी नहीं सोचना। अब ये एक विचार है। हम लोग राजयोग में कहते हैं इस मन को शून्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। अगर आप ये मन में सोचते हैं कि बस मुझे अपने मन को शून्य करना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो शून्य तो मन होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी तो सोच चलेगा ना कि मन को शून्य करना है, कुछ नहीं सोचना है। तो ये भी अगर सोच चले तो उससे मन शून्य कहाँ हुआ, ये भी तो सोच तो चल ही रहा है कि मन को शून्य करना है। इसीलिए विचारों को शून्य करना ये कोई मेडिटेशन नहीं है। तो फिर कई कहते हैं कि क्या करें, उसमें दबाव डालना पड़ता है, मन को दबाव डालना पड़ता है, तो दबाव कैसे डालें हम? तो हम कहते नहीं, दबाव भी नहीं डालना है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, कितना प्यार से याद करता है, पत्नी अपने पति को कितना प्यार से याद करती है, तो जब हम किसको याद करते हैं तो उसके लिए कोई दबाव थोड़ी डालते हैं। राजयोग भी परमात्मा की याद ही तो है। जब जब दुख होता है तब तब परमात्मा ही याद आता है। कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई विघ्न आता है, कोई समस्या होती है, तब हम कहेंगे हे भगवान शक्ति दो, हे भगवान रहम करो, हे भगवान मदद करो। इसीलिए कबीर ने कहा, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, दुख में बहुत याद करते हैं। तो दुख में तो ईश्वर को याद वैसे भी करते हैं, परंतु उसके बाद का वाक्य और ऊंचा है, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। हर वक्त उस परमात्मा की याद हो तो कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि सुख के सागर के साथ संबंध है। जिस प्रकार एक वातानुकूल कमरे में कोई बैठा है, एयर कंडीशन रूम है, टेम्परेचर को सेट कर लिया है कि भाई 22 डिग्री पर ये टेम्परेचर यहाँ रहेगा, बाहर चाहे 40 डिग्री क्यों ना हो, पसीना पसीना बाहर आ रहा है पर कमरे में वो 22 डिग्री का ही अनुभव कर रहा है, उसको बाहर के तापमान का जैसे पता ही नहीं। इसी प्रकार मन को हम कैसे वातानुकूल या उस मन के अनुकूल बना सकें, जो कोई भी परिस्थिति हमको दुख नहीं दे, अपनी स्वस्थिति को कितना ऊंचा बना ले, हर वक्त उसकी याद हो तो कभी हम दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि सुख के सागर से हमें संबंध होने के कारण उस सुख की अनुभूति हर वक्त होती है। इसीलिए राजयोग में हमें कोई मन को दबाव डालने की भी जरूरत नहीं है। फिर कई समझते हैं मन तो बहुत चंचल है, इसलिए हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, बस छोड़ देते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, मन तो बहुत चंचल है। चाहे मन कितना भी चंचल है, लेकिन मन के ऊपर कुछ आधार होते हैं, जो आधार के कारण ही मन वही बात सोचता है। बिना आधार के मन नहीं सोचता। दुनिया में आज करोड़ों इंसान हैं, आप सबके विषय में थोड़ी सोचते हो, आपके मोहल्ले में कितने लोग होंगे उसके विषय में भी नहीं सोचते हो, आपके बिल्डिंग में कितने लोग रहते होंगे उनके बारे में भी कहाँ सोचते हो आप, दुनिया में कितनी घटनाएं होती है कहाँ हम सोचते हैं, कुछ तो पता भी नहीं है। तो पता ही नहीं है तो मन जाएगा ही नहीं। इसीलिए मन के कहीं भी जाने का कुछ आधार होता है, बिना आधार के मन नहीं जाता। तो इसलिए कोई कितना भी कहे मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन चंचल क्यों है? क्योंकि जिसके विषय में सोचते हैं उसको आप जानते हैं तभी तो सोचते हैं। कई बार हम जागृत अवस्था में ऐसे सोच लेते हैं, डे ड्रीमिंग कर लेते हैं, स्वप्न लोक में चले जाते हैं, पर वो भी आप जानते हैं तभी तो आप सोच सकते हैं। जिसके विषय में आप कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। इसीलिए कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकता, मेरा मन चंचल है इसलिए मेरा मन मेडिटेशन हम नहीं कर सकते, मेरा नहीं होगा। कर सकते हैं, हर एक कर सकता है, आप किसकी याद में जब खो जाते हैं तो इतना खो जाते जो उसे निकलना मुश्किल हो जाता है, वो एक ही बात में खो जाते हैं। चंचल कहाँ है, उस समय तो एकदम खोया हुआ है। तो चाहे कोई कहे कि मन तो बंदर की तरह है, मन तो हवा से भी तेज है, मन तो बेलगाम घोड़ा है, लेकिन नहीं, कुछ आधार होते हैं मन के कहीं भी जाने के, वो आज हमको आपको बताएंगे। तो मन आपका सहज परमात्मा में लग जाएगा। फिर कई कहते हैं क्या करें, इसके लिए तो आसन लगाने पड़ते हैं, पर मैं तो पद्मासन नहीं कर सकता, मैं शीर्षासन नहीं कर सकता, ये आसन मैं कैसे करूंगा, ये तो जवान लोग करेंगे, मैं तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, मैं कहाँ कर सकूंगी, ये तो जवानों क्या काम है। तो कई जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझते हैं आसन करना ही योग है, तो ये तो बूढ़े नहीं कर सकते, जवानों का काम है। और जवान सोचते हैं मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये तो योगियों का काम है, ये तो सन्यासियों का काम है, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम कहाँ करेंगे। तो जवान सोचते हैं, जब बूढ़े होंगे ना तभी ये बातें सोचेंगे, अभी तो खाओ पियो मौज करो, दुनिया ही कहाँ देखी हमने, वो तो देखने दो पहले, ये सब अभी छोड़ने का समय नहीं है। और बूढ़े सोचते हैं ये सब आसन हमारे से नहीं होते, जवान होते तो करते। तो जवान सोचते बूढ़े होंगे तो करेंगे, बूढ़े कहते जवान होते तो करते, तो कब करेंगे, कब करेंगे, मरने के बाद। इसीलिए कहा जाता है, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। जब मरने की घड़ी आती है तब सब यही कहते हैं, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। परंतु जिस व्यक्ति ने सारी आयु कभी ईश्वर का नाम ही नहीं लिया हो, मान लो, वो अंत के समय उसको कहाँ याद आएगा। बच्चे ने सारा साल पढ़ाई की नहीं हो और एक दिन पहले किताब लेकर के बैठे, पढ़ सकेगा, कुछ भी नहीं पढ़ सकेगा। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए जब अर्जुन भगवान से कहता है, भगवान ये मन बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े की तरह है, इसको वश करना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान कहते वैराग्य अभ्यास, इससे मन को वश में किया जा सकता है। पर वैराग्य का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य का मतलब है सब कुछ होते हुए भी उसमें फंसना नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जैसे एक नट रस्सी पर चलता है और गिरता नहीं है, कितनी बड़ी कला है ये। और दूसरा व्यक्ति टांगे मजबूत होते हुए धरती पर चलते भी गिर जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं था तो गिर गया। हाँ, गिर गया तो लोग कहेंगे क्या बात थी, कैसे गिर गए, देखा नहीं क्या, सीढ़ी थी देखा ही नहीं, पत्थर था देखा ही नहीं, तो गिर गया। और एक व्यक्ति रस्सी पर भी चल रहा है तो भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि ध्यान है उसका। इसलिए मेडिटेशन माना ध्यान, तो किस बात का ध्यान, तो वो ध्यान क्या है ये हमें समझना है। तो केवल मन को शून्य कर देना या शरीर को कष्ट देना या दबाव डालना मन पर, यही नहीं है मेडिटेशन। इसलिए फिर हमें अच्छी तरह समझना होगा। कई फिर कहते इसके लिए तो वातावरण एकदम शांत चाहिए, तभी तो हम ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर आवाज होगा, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, तो कैसे मेडिटेशन होगा। हम कहते हो सकता है आप किसी बात की याद में खोए हुए, लोग इतना बाहर से चिल्ला रहे लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी दुनिया में हो। इसीलिए ये भी शिकायत कोई नहीं कर सकता है कि आवाज बहुत होता है तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज्ञान हम आपको जो सुना रहे, इसके लिए शांत वातावरण चाहिए। अगर बहुत आवाज ठक 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 हो रहा है, आप ये नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मेडिटेशन के लिए ठक ठक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए बहुत आवाज है तभी हम नहीं कर सकते, ये भी कोई शिकायत नहीं कर सकता। कभी भी कहां भी कर सकते हैं। फिर कई कहते इसके लिए आंखें बंद करनी होगी, हम कहते वो भी जरूरी नहीं है। आप चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हर कर्म करके करते ये मेडिटेशन कर सकते हो। रोटी पका रही है माताएं और ध्यान कर रही है और आंखें बंद करके करेगी तो रोटी तो जल जाएगी। लेकिन योग तो हमको कर्मों की कुशलता सिखाता है। योग कर्मेषु कौशलम, योग कर्मों की कुशलता का दूसरा नाम है, जीवन जीने की कला का दूसरा नाम है। तो आंखें बंद करके कितना समय आप बैठेंगे, चलने चलते फिरते तो रहना ही है। इसलिए ये चलते फिरते भी हो सकता है। और फिर कई कहते हैं कि इसमें अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता, हम कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल चलने दो ना। कोई प्राणायाम करते हैं ये अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कोई आसन करते हैं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मन के लिए हमें मानसिक आसन चाहिए। मानो कोई शीर्षासन करता है, सिर पर उसका संतुलन रखता है, सिर पर तो सिर पर संतुलन बहुत तो नहीं रख सकते हैं। कहीं स्पॉन्डिलाइटिस किसको है, कोई यहाँ भी दर्द है तो कहाँ कर सकेगा उसको। उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, बहुत किसी के गाइडेंस में ये करना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते। परंतु सिर पर बैलेंस की बजाय सिर का बैलेंस, बैलेंस ऑफ माइंड, हर परिस्थिति में मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख में समान रह सके, ये संतुलन हम अवश्य कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। कोई भी कर सकता है। कोई कहे मुझे पद्मासन के रूप में बैठना होगा तभी मेडिटेशन करेंगे, हम कहेंगे जरूरत नहीं है, किसको घुटनों की प्रॉब्लम है कहाँ पद्मासन कर सकेगा। लेकिन हाँ, पद्म जैसा जीवन तो हरेक बना सकता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अलिप्त रहता है, तो हम अपने जीवन को पद्म समान कमल समान बनाएं। जरूरी नहीं कि कमल समान पद्म समान बैठना है तभी हम मेडिटेशन कर सकेंगे। इसीलिए विशेष रूप से श्वास चढ़ाना है, रोकना है, प्राणायाम इसके लिए करना है, वो एक अलग समय देकर शरीर के लिए करते वो अलग बात है, वो हर्जा नहीं है, हम भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो उसके लिए तो प्राणों से जो प्यारा है उस परमेश्वर में मन को लगाना, ये और भी ऊंची बात है। इसीलिए राजयोग क्या है उससे हमें समझना होगा। कई कहते अच्छा तो लगता है लेकिन जल्दी उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हम कहते बोर इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको किसी ने मंत्र दे दिया कि आप, ये एक मंत्र है ओम नमो शिवाय का जाप है, आप 1,00,000 बार सारे दिन में ये जाप करना। तो ओम नमो शिवाय का जाप करने के लिए हमें कहा गया, कई बार माला भी हाथ में पकड़ते हैं, सामने शिव का शंकर सामने रख करके उसका ध्यान भी करते हैं, हाथ में माला भी होगी और तो मुख पर मंत्र का जाप भी करते रहेंगे, फिर गिनती भी करते रहेंगे कितनी बार हुआ, कितना हुआ, 100 हुआ 200 हुआ 500 हुआ 10,000 हुआ 50,000 हुआ, क्योंकि 1,00,000 तो बहुत बड़ी गिनती है, 100,000 1,00,000 होते हैं। और जब 1,00,000 हो गया कहेंगे हाँ आज का पूरा हुआ हमारा जाप। लेकिन ओम नमो शिवाय जो मुख से उच्चारा, क्या सचमुच शिव से योग लगा? हाथों को तो उंगलियों को तो काम मिला मणका फेरने का, आंखों को भी काम मिला कोई मूर्ति पर हम ध्यान लगा रहे हैं, मुख को भी काम मिला जाप करने का, लेकिन मन को तो काम मिला ही नहीं, इसीलिए बोर हो जाते हैं। मन को कुछ क्रिएटिव काम चाहिए। तो मन चाहे कितना भी चंचल है लेकिन वो बड़ा इनोसेंट है, बहुत ही नादान है। जैसे एक निर्दोष बच्चा होता है, बच्चा भले चंचल होता है लेकिन निर्दोष है, तो उस चंचल बच्चे को माँ कैसे संभालती है, उसको कोई ना कोई काम देती है। उस काम में वो बिजी हो जाता है। और क्रिएटिव गेम्स आजकल बहुत आते हैं, तो बच्चे वो रचनात्मक खेल करते हैं, मकान बनाएंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, उसको नया रूप देंगे, फिर पेंटिंग करते हैं, कुछ एक ड्राइंग करते हैं, उनको बिजी रखा बच्चों को, तो बच्चे रचनात्मक भी बन जाते हैं। उनको दबाते नहीं है, उनको मारते नहीं है, उनको छूट भी नहीं देते हैं कि जाओ बच्चे जो चाहिए सो करो, वो माँ के नाक में दम कर देगा, छोड़ देंगे बच्चे को, तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, चंचल है, तोड़फोड़ करता रहेगा, तो छोड़ना भी नहीं है पर उसको मारना भी नहीं है, पर क्या करेंगे उसको काम दे देंगे तो बिजी हो जाएगा उसमें। तो मन को भी कुछ काम चाहिए, नहीं तो खाली मन शैतान का घर बन जाएगा। आप एक मकान को खाली रखो और आप एक महीना ताला लगा करके सब कुछ बंद करके चले जाओ, एक मास के बाद आप वापस लौटो, वो खाली मिलेगा या अंदर कोई होंगे? कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कॉकरोच, सब ने अपना घर बना लिया उसमें। आपने तो सोचा मैं तो खाली करके गया था, वो कहां न कहां से आ जाएंगे, उनको कोई दरवाजा खिड़की नहीं चाहिए। तो इसीलिए खाली मन हम सोचते हैं रखेंगे पर ये शैतान का घर बन जाएगा। तो इसलिए मन को काम भी देना, पर क्या काम देना है ये हमें समझना होगा। और फिर कई समझते बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ध्यान कुछ चाहिए इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन बहुत सहज है ये। अगर ये सहज रूप से आपने समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या है राजयोग? राजयोग अर्थात स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से राज याद करना, ये राजयोग है। अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति में रहना, ये राजयोग है। पहले आत्मिक स्थिति चाहिए। जैसे आप बिजली की तार से अपने तार को जोड़ते हो, या मीटर फ्यूज वायर उड़ गई, मानो फ्यूज उड़ गया, तो आप वो फ्यूज को ठीक करते हो, तो कैसे फ्यूज को ठीक करते हो? पहले रबर हटाते हो तार से, तांबे की जो तार है उसके ऊपर जो रबर लगा हुआ है वो हटाना पड़ता है, और तांबे को फिर तांबे से जोड़ते हैं, फ्यूज में वो तांबा होता है, वो तांबे को तांबे से जब जोड़ते हैं तब करंट पास होगा, वापस आपको बिजली आ जाएगी। फ्यूज हो गया माना वो कट गया संबंध। तो आत्मा और परमात्मा का तो वास्तव में अनादि अविनाशी संबंध है, कोई नया संबंध थोड़ी है। देहधारियों के साथ तो हम नए संबंध जोड़ते हैं, एक गर्भवती स्त्री को ये पता थोड़ी होगा कि कैसा बच्चा पैदा होगा, पहले तो ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि लड़का होगा या लड़की होगा, वो भी पता नहीं। आजकल चलो कुछ कर लेते हैं, अलाउड तो नहीं है, ये विरुद्ध है कानून के, तो पता ही नहीं चलता कौन आएगा, कैसा होगा बच्चा। तो नया संबंध है ये, एक लड़की है, कन्या है, उसका संबंध करना है, शादी करनी है, माँ बाप को कौन सा लड़का मिलेगा पता ही नहीं है, तो नया संबंध होगा। तो ये देहधारियों के संबंध नए संबंध होते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध तो बहुत पुराना संबंध है, अनादि अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम हर संबंध से याद किया, और अंत में कहा त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब संबंध मेरे ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब ये गाते हुए भी अगर किसी से पूछो परमात्मा से आपका क्या संबंध है, कहेगा पता ही नहीं क्या संबंध है, गाते हुए भी पता नहीं, क्योंकि केवल गाते हैं, समझ से नहीं गाते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु सब कुछ है। तो आत्मिक स्थिति नहीं है, दे अभिमान, ये रबर बीच में आ गया है, इस रबर को हटाना पड़ेगा। और आत्मा परमात्मा का जो अनादि अविनाशी संबंध है, पर कनेक्शन टूट चुका है, मीटर से वो जो फ्यूज है वो उड़ गया है तो वापस उसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं शक्ति का अनुभव होगा, क्यों नहीं सर्वगुण ईश्वर से हमें अधिकार के रूप में मिलेंगे। इसीलिए राजयोग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं आज हम अपने मन को परमात्मा में लगा सके, क्योंकि स्वयं की पहचान ही नहीं थी। आत्मा का ही कनेक्शन परमात्मा के साथ है, देह का कनेक्शन परमात्मा के साथ है ही नहीं। देह का कनेक्शन प्रकृति के साथ है, ये पंच तत्वों के साथ है शरीर का कनेक्शन। और जब मनुष्य मर जाता है पांच तत्व को वापस करने पड़ते हैं। अग्नि संस्कार करके वो पांच तत्व लौटा दिए पांच तत्वों को, जहां से ये शरीर आया था। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान के घर से आया है भगवान के घर जाना है। शरीर के लिए थोड़ी कहेंगे भगवान के घर से आया है भगवान के घर जाना है, वो तो कहेंगे मिट्टी से आया है मिट्टी में मिल जाना है। जहां से जो चीज आई है वहीं वापस जानी है। लेकिन आत्मा के लिए कहेंगे परमात्मा के घर से आइए। बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा मम्मी से पूछेगा मम्मी ये कहां से आया, आप कहेंगे भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ने दिया माना शरीर को थोड़ी भगवान ने दिया, वो तो प्रकृति ने दिया। पर आत्मा जरूर परमात्मा की है और उसके लिए जरूर कहेंगे कि परमात्मा के यहां से आइए। कोई मर गया, बच्चा पूछेगा मम्मी कहाँ गया, आप कहेंगे भगवान के पास गया। तो भगवान के पास कौन गया, शरीर तो वहीं पड़ा है। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है, लेकिन हम कितना उसको याद कर पाते हैं। दे अभिमान इतना है जो परमात्मा याद आएगा ही नहीं, क्योंकि खुद को देह समझ रही है तो देहधारी देह से संबंधित वस्तु व्यक्ति वैभव वही मन में आएंगे। फिर कहेंगे क्या करें, मन तो बड़ा चंचल है। और दूसरा कारण मन न लगने का है कि परमात्मा कौन है यही पता नहीं था। इसीलिए आत्मा का परिचय परमात्मा का परिचय ये राजयोग में आज आपको सुबह दिया गया। अब इसके लिए तीसरी बात कि हम अगर परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं तो तीसरा भी एक कारण है जो मन नहीं लगता, और वो कारण है कि मन आज इतना मैला हो गया है, इतना मैला हो गया है कि उस मैले मन में परमात्मा जगह भी कैसे ले। जैसे दूध शुद्ध होता है सफेद होता है, उसको रखने के लिए बर्तन भी कितना साफ स्वच्छ चाहिए। अगर मैले बर्तन में दूध रख देंगे तो दूध भी मैला हो जाएगा, पीने योग्य नहीं होगा। खटाई वाले बर्तन में रख देंगे तो फट जाएगा। इसलिए कितना साफ करना पड़ता है दूध को रखने के लिए, जैसी चीज वैसा उसका बर्तन। तो परमात्मा की याद कितनी स्वच्छ चीज है और मन मैला है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी न जाने क्या क्या मन में बातें चलती रहती है, और उसमें हम सोचे मन में ईश्वर जगह ले, कैसे लेगा। इसीलिए इस मन का शुद्धिकरण भी चाहिए। अब कैसे करेंगे इसका शुद्धिकरण, वो हम राजयोग में देखेंगे। तो क्या है राजयोग, जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। बच्चा तो ये नहीं भूल सकता ना, मैं किसका बच्चा हूं। एक राजा का बच्चा होगा वो कैसे भूलेगा मैं राजकुमार हूं। भले राजा नहीं हूं पर राजकुमार तो हूं, राजकुमार भी उतना ही ठाट दिखाएगा जितना राजा का ठाट होता है। आजकल मंत्रियों के बच्चे होते हैं, मंत्री का इतना ठाट नहीं होगा उससे जैसे उसके बेटे का ठाट होगा ना, मंत्री का बेटा बड़ा नशा होता है मैं किसका बेटा हूं। तो हम कौन हैं ये अंतर में स्वमान पहले आए कि मैं एक आत्मा हूं, फिर मैं किसकी संतान हूं, परमात्मा की संतान हूं। बस ये चिंतन ये राजयोग हमें अनुभव कराएगा। तो इसलिए राजयोग का आधार और विधि को हमें समझना है। मन किस किस विषय में सोचता है, अब अगर हम देखें उसके सोचने का कुछ आधार होता है। पहला आधार होता है किसी का परिचय। आप देखिए ट्रेन में सफर करते हैं तो जैसे ट्रेन में बैठे अपनी सीट आपने ली, अब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले हैं, खाली बैठे हैं, फ्री हैं, तो आपके पास में जो बैठा होगा उनसे सोचे थोड़ा बात करते हैं, तो पहले तो आप उनका परिचय पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, परिचय लेंगे। अब परिचय लेते लेते ये पहला आधार है, मन के कहीं भी जाने का आधार है परिचय। बिना परिचय के मन नहीं जाएगा कहीं भी। फिर परिचय लेते लेते अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, कोई इस आपके साथ इनका पुराना संबंध है, कोई रिश्ता है, एक ही गांव के हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, या एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, कुछ समानता है, या आपके कोई दादा मामा चाचा काका उनका दूर का कोई रिश्ता है, तो जहां रिश्ता निकल आया, संबंध निकल आया, वहां मन और ज्यादा जाएगा। नहीं तो केवल परिचय मिल गया, रास्ते में कई लोगों से मिलते हैं, चलो परिचय हो गया, वो अपनी जगह गया, हम अपनी जगह, एक दो को भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा आधार होता है संबंध। अगर संबंध निकल आया कोई दूर का भी, तो भी आप, अरे आप तो मेरे ही भाई हो, भले दूर का है तो भी उसको भाई बना देंगे। फिर संबंध का पता होने के बाद फिर धीरे धीरे देखते हैं कि इनमें और आप में बहुत समानता है, तो एक दोस्त से प्यार भी हो जाता है, स्नेह भी हो जाता है, एक दो के साथ संस्कार मिलते हैं, स्वभाव मिलते हैं, तो स्नेह भी हो जाता है। तो तीसरा आधार है उससे स्नेह। जिससे संबंध होता है, जिससे स्नेह होता है, उसी को ही हम याद करते हैं। और फिर अगर उनसे कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ आपको उनसे मिल जाए, आप तो उसको कभी नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे आपने इतना मेरे लिए किया, मैं आपका कभी एहसान चुका नहीं सकूंगा। और जैसे जब जब वो चीज यूज करेंगे वो याद जरूर आएगा, इसने मुझे दिया था। तो परमात्मा से योग आत्मा का, उसके लिए भी ये चार आधार है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। अब देखिए आपको सुबह आत्मा और परमात्मा की पहचान दी गई, और आपने अभी भी कहा कि मैं एक आत्मा हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं, तो अब ये पहचान आपको मिल गई, परमात्मा कौन है ये भी आपको पता चल गया। अब दोनों का संबंध जो आज टूट चुका है उसको जोड़ना है। जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं, हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो उसके लिए ट्यूनिंग करनी पड़ती है, हमको पता होना चाहिए कौन सा मीटर बैंड है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वेवलेंथ है, नहीं तो सारा दिन सुई घुमाते रहो, वो रेडियो स्टेशन मिलेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी मिलेगा, वो पता होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, तब हमारा रेडियो रिसीवर वो आवाज उस स्टेशन से कैच करेगा, तो तभी संबंध होगा, कुछ मैचिंग हो, कुछ समानता हो। फिर उनसे तो किसी, तो परमात्मा से भी हमारे बहुत संबंध है, बस उन संबंधों का चिंतन करो तो मन क्यों नहीं लगेगा परमात्मा में। फिर उनसे ही सच्ची प्रीत हो। आज परमात्मा को भले हम याद करते हैं लेकिन स्वार्थवश याद करते हैं, सच्ची प्रीत से याद नहीं करते। कोई चीज चाहिए तो हे भगवान हमको ये दो, हे भगवान बच्चा दो, हे भगवान धन दो, हे भगवान मकान दो, हे भगवान ये दो दो दो, यही करते रहते हैं। अगर चीज नहीं मांगेंगे तो कहेंगे हे भगवान शांति दो, शक्ति दो, इसमें भी दो दो दो, हाँ दीजिए दीजिए। तो चाहिए ही चाहिए हर वक्त, यही हमारा ईश्वर से रिश्ता हो गया है, मांगते ही रहते हैं। चलो गुण नहीं मांगेंगे तो कोई भूल की हे भगवान माफ कर दो, माफ कर दो, उसमें भी दो 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 ही है, माफ कर दो, कर दो, माफ कर दो, तो मांगते ही रहते हैं। इसीलिए अगर मिला तो कहेंगे भगवान तुम बहुत अच्छे हो, नहीं मिला तो ही भगवान तुम्हारे जैसा बुरा कोई नहीं, तुमने मुझे नहीं दिया, मैंने इतना तुम्हारी भक्ति की तुमने मेरा नहीं सुना, हे भगवान तुमने मेरे से ये ले लिया। लेकिन था किसका, हम ये भूल जाते हैं। जब मिलता है तो कहेंगे भगवान ने दिया, अगर कोई चीज चली गई हे भगवान तुमने मेरा ये क्यों लिया, तो भगवान कहेगा था किसका, आपको तो अमानत रूप में रखी गई थी आपके पास। किसी की चीज आपके पास अमानत रूप में रखी जाए और आपको कहा जाए भाई 6 मास के बाद हम ले लेंगे वापस, आप रखना 6 मास तक, फिर आएंगे हम लेंगे, और आप 6 मास के बाद कह दो नहीं नहीं अभी नहीं दूंगा ये तो मेरा हो गया, तो ये तो अमानत में ख्यानत पड़ गई। तो ये जो कुछ हमारे पास है ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, यही तो मानते हैं नहीं मानते है? कि मानते हैं नहीं मानते है? किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। आरती में भी यही कहते हैं, ये तन मन धन सब ईश्वर तेरा है, फिर तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है भगवान, ये सब तेरा है। तो उनका ही हम ये यूज कर रहे हैं, तो इतना भगवान ने जो हमें दिया है उसका तो हम धन्यवाद ही नहीं करते, पर मांगते ही रहते हैं। तो आज हमारा परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है पर स्वार्थ है। तो प्यार कैसे होता है, जब किसी के गुणों को देखते हैं, गुण दिखाई देते हैं तो प्यार पैदा होता है। तो परमात्मा के गुणों का हम चिंतन तो करते हैं, स्तुति गाते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्या है, ईश्वर की कीर्ति गाना। तो कीर्तन करना, उनकी कीर्ति गाना, उनका गायन करना, उनका गुणों का वर्णन करना, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन वो करते 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 फिर कुछ मांग लेते, हे भगवान आप कृपा सिंधु हो, आप रहम दिल हो, तो मुझ पर थोड़ा सा रहम करो, बस ये कह दिया, माना स्वार्थी बन गए, मांग लिया कुछ। तो राजयोग में हम कहते हैं मांगो कुछ नहीं, आप अधिकारी हो, आपके भी वही गुण है जो परमात्मा के गुण है, पर अधिकार से लेने होते हैं, मांगने से नहीं लेने होते हैं। और जैसे जैसे हम इन गुणों का चिंतन करते जाते हैं परमात्मा के, वैसे वैसे प्यार उत्पन्न होता है। फिर उन गुणों में खो जाओ, प्यार में खोना होता है, प्यार में मांगना नहीं होता है। और जैसे उस प्यार में खो गए तो प्राप्ति तो अथाह है, अनगिनत है, बेहद है। जैसे कोई सागर की लहरों में लहराए, सागर के तले में चला जाए तो उसको जो वो सुख मिलता है वो रास्ते पर चलने में नहीं मिलेगा, इतना सुख मिल सकता है अगर वो तैरना जानता है, डाइविंग करना जानता है। तो परमात्मा का प्यार भी हम ऐसे ही अनुभव कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आत्मा की पहचान आपको सुबह दी गई कि आत्मा क्या है, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है, और आत्मा में 7 मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये 7 मूल गुण जिसको हम इननेट क्वालिटीज कहते हैं, ये कोर वैल्यूज कहते हैं, संसार में जितने भी आज अलग अलग बातें हैं सबके वैल्यूज होते हैं, फैमिली वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, ये नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, ये सारे जो मूल्य हैं, इन मूल्यों का आधार ये 7 मूल्य हैं। और ये आत्मा के निजी गुण हैं, ये कहीं से लाए नहीं जाते, ये कहीं से आत्मा मांगने से मांगती नहीं, उसके पास ही है। तो जब ये आत्मा को समझ आ गई और ये समझ आ गई कि मैं तो आत्मा इस शरीर में मेहमान के रूप में हूँ, मेरी ये टेम्पररी एड्रेस है ये भ्रकुटी, और मेरी जो परमानेंट एड्रेस है वो तो शांति धाम है, परम धाम है। इस संसार में मैं मेहमान हूँ, ये संसार एक रंगमंच है, एक एक्टर के रूप में हूँ, और जो आत्मा के गुण है ये मुझे अपने कर्म में व्यक्त करने हैं, ये मेरा लक्ष्य हो इस संसार में आने का। जब ये हमको समझ आ गई, फिर उसके बाद परमात्मा की समझ आ गई कि परमात्मा कौन है। वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसको हम शिव कहते हैं, और जब शिव कहते हैं तो शिव बाबा कहते हैं, बाबा माना पिता, बाबा केवल नाम नहीं उच्चारण करते, पर बाबा कहने से वो प्यार उत्पन्न होता है क्योंकि पिता है। तो शिव बाबा हम किसको कहते हैं, उसी निराकार ज्योति स्वरूप को। और फिर वो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है, दाता है, जिस शिव के लिए कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर, और वो मेरा परम पिता है, मुझ आत्मा का पिता है। जैसे ये हमको समझ आती है कि मैं उस आत्मा, उस परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, मेरा भी असली घर वही है जो मेरे पिता परमात्मा का घर है। और परमात्मा अब इस समय जो महान कार्य कर रहे हैं, इस कलयुगी दुनिया को बदल रहे हैं, एक सतयुगी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ये जैसे ही हमें पता चलता है तो मन उस परमात्मा में लगने लगता है, क्योंकि परिचय मिल गया। अब जैसे ही हमें परिचय मिला तो संबंध जोड़ सकते हैं, परिचय के बाद होता है संबंध, पर संबंध जोड़ने की भी विधि होती है। ऐसे ही नहीं संबंध जोड़ा जाता है, जैसे किसी कुमार और कुमारी का संबंध जोड़ना, उनका विवाह करना है, तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी के पास ले जाते हैं और कहते हैं जरा देखो इनका योग है, तो जन्म पत्री दोनों की ज्योतिषी मैच करता है, टैली करता है, मिलाता है, उनकी कुंडली देखता है दोनों की, उसमें ग्रह राशि संस्कार स्वभाव ये सब उसकी कुंडली से पता चलता है, और उसको उन दोनों को मिलाता है। अगर उनमें मैचिंग होती है, मिलते हैं, तो कहेंगे योग है। तो योग के लिए क्या चाहिए, स्वभाव संस्कार ग्रह राशि मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिलते हैं, टक्कर खाते हैं, तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने के लिए मिलना चाहिए। अब आत्मा परमात्मा का मिलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टक्कर ही खाया, मैचिंग था ही नहीं। मैंने सोचा परमात्मा तो निर्गुण निरंजन निराकार, नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं कुछ नहीं, और मैं तो फलाना नाम फलाना रूप फलाना गुण फलाना फलाना यही दे के अभिमान में ही रहे, तो मैच तो कुछ है ही नहीं। अब राजयोग हमें सिखाता है कि आत्मा परमात्मा में बहुत मैचिंग है, बहुत समानता है, इसलिए कई लोग आत्मा सो परमात्मा ही कह देते हैं क्योंकि मैचिंग बहुत है। लेकिन आत्मा ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो आत्मा जाकर के प्राप्त करती है, वो तो सदा ही आपका पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, साजन है, वो दाता है, उसका उसका कार्य ही अलग है। लेकिन मैचिंग किस में है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही रूप में समान है, दोनों ही ज्योति स्वरूप है। आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, तुरंत नहीं पता चलेगा ये आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ, दोनों ज्योति है। तो स्वरूप में दोनों समान है। दूसरा, घर भी एक ही है, बाप की एड्रेस और बच्चे की एड्रेस एक ही है, ये संसार हमारा घर नहीं है। इसलिए कई बार दुखी होकर के हम भगवान को कहते हैं, रो करके दुखी होके चिल्ला करके, हे भगवान बस उठा लो मुझे इस दुनिया से, नहीं जीना है। कई बार भगवान को कोसते, हे भगवान आपने मुझे क्यों दुनिया में भेजा, या यहाँ तक कह देते हैं भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों, क्या दुख देने लिए हमें बनाई, बस उठा लो मुझे नहीं जीना है। अब राजयोग में हम सीखते हैं कि भगवान को इस प्रकार भी मत कहो। अगर आपको मैं लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, अब ये चिल्लाने की बजाय कि भगवान उठा लो, उसकी बजाय मन से चले जाओ, वो आपका ही घर है, लेकिन घर की एड्रेस ही भूल गए हो तो कैसे घर पहुंचेंगे। आत्मा तो एक पंछी है, कोई परेशानी मेरे सामने आ रही है जैसे एक पक्षी के आगे कोई बिल्ली आ जाए तो बिल्ली से डरेगा थोड़ी, उड़ जाएगा। वो क्यों बिल्ली से डर करके बैठा रहेगा, वो तो उड़ जाएगा, बिल्ली थोड़ी उसके पीछे उड़ेगी, बिल्ली को तो पंख नहीं है। लेकिन उस समय अगर पक्षी ये भूल जाए कि मुझे पंख है और वहीं डर के मारे बैठा रहे तो बिल्ली पकड़ लेगी, उड़ जाए तो बिल्ली नहीं उसके पीछे उड़ेगी, वो देखती रह जाएगी। तो परिस्थितियां अपनी जगह है, मैं आत्मा क्यों उसमें फंस जाऊं। मैं आत्मा तो पंछी हूं, एक सेकंड में मन और बुद्धि रूपी पंख से उड़ जाओ और ऐसा अनुभव करो उस अखंड ज्योति के महतत्व में, मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान हूं अपने पिता परमात्मा के सामने। जैसे आप किसी को याद करते हो तो उसकी छवि, उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है ना, मन पटल पर मन की आंख उसको देखती है, तभी तो उसको याद करते हैं। तो इसीलिए आपका और पिता परमात्मा का घर एक ही है, उस घर में चले जाओ। घर में जाने के लिए पिता को कहना नहीं पड़ेगा कि हे भगवान मुझे उठाओ, निमंत्रण लेने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार है मन से उस घर में जाने की, जाने का अधिकार है। इसीलिए चिल्लाने की बजाय, दुखी होने की बजाय चले जाओ उस घर में और महसूस करो अपने आप को उस शांति के धाम में, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ उस परम ज्योति के सामने। फिर तीसरी समानता है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं है कि परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा कोई अशांत स्वरूप है, नहीं, आत्मा शांत स्वरूप है। लेकिन देह अभिमान में आत्मा ही आकर के अपने को अशांत कर देती है, फिर अगर वो आत्मस्थिति हो तो शांति तो मेरा स्वभाव है। जल का स्वभाव शीतलता होता है, पर अग्नि का समावेश हो गया तो जल गर्म हो जाता है, पर अग्नि निकल गई तो जल तो शीतल हो ही जाएगा, उसका वही स्वभाव है। तो ये देह अभिमान का जो स्वभाव है वो अशांति है। इसीलिए जब कोई मनुष्य मरता है तब कहते इनका देह शांत हो गया, तो देह शांत होना माना मरना, नहीं तो देह तो अशांत है ही है। सारा दिन शरीर की कोशिकाएं आपकी बदलती रहती है, बहुत परिवर्तन शरीर में आता ही रहता है, एक चमड़ी जाती है, दूसरी आती है, वो जाती है, आता ही रहता है, परिवर्तन क्षणे क्षणे शरीर में होता ही रहता है। इसीलिए अगर हम अशांत हैं इसका मतलब हम देह के अभिमान में हैं, और अगर ये निश्चय हो जाए मैं एक आत्मा हूं और शांत स्वरूप आत्मा हूं तो शांति मेरे से दूर है ही नहीं। जब शांति पाठ करते हैं तो तीन बार शांति शब्द का प्रयोग करते हैं, ओम शांति शांति शांति, तो तीन बार का बड़ा अर्थ है। पहला अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, दूसरा है कि मैं आत्मा शांति धाम का वासी हूं, तीसरा है मैं आत्मा शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान अशांत कैसे हो सकता हूं। किसी का बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, बहुत उसकी प्रॉपर्टी हो, उसका बाप भी बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वो कहेगा क्या मैं तो गरीब हूं। अगर कहता है माना वो जानता नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, भूल गया है। तो आत्मा भी भूल गई है अपने आप को, अपने आप को भूली, घर भूली, अपना पिता भूल गए। अब परमात्मा वो स्मृति दिलाने आए हैं, हे बच्चे पहचानो अपने आप को। कई लोग आत्मा को परमात्मा का अंश समझते हैं, तो हम कहते हैं अंश का मतलब कोई ये नहीं है कि हम कोई आत्मा टुकड़ा है उनके, टुकड़े टुकड़े नहीं बन जाते, इतनी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाए तो परमात्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, टुकड़े टुकड़े निकलते गए, कपड़े से धागे निकलते गए तो कपड़ा क्या बचेगा, वो सब धागे ही निकल गए। तो अंश का मतलब ये नहीं है कि हम उसके कोई भाग हैं या टुकड़े हैं, पर अंश का मतलब है कि गुणवत्ता वही है पर संख्या में अंतर है, क्वालिटी सेम क्वांटिटी इज डिफरेंट। वो शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, क्वालिटी वही है गुणवत्ता वही है, मैं अशांत स्वरूप नहीं हूं। बस अपने स्वरूप में टिक जाओ, एक सेकंड लगेगा, शांति आपसे कितनी दूर है, एक सोच की दूरी पर है बस। वो सोच जैसे स्विच ऑफ है अंधेरा है, स्विच ऑन किया लाइट आ गई, तो बस स्विच कोई चेंज करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति धाम का वासी हूं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, शांति तो मेरे पास ही है। इसीलिए राजयोग की विधि क्या हुई, ये चार बातों की समानता को बुद्धि में रखते हुए हम परमात्मा से योग लगाते हैं। अब इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान पर दे रहे हैं, अधिक इसके बारे में कल भी आपको बताया जाएगा शाम को, लेकिन इसकी चार अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है आत्मा परमात्मा का चिंतन, मन का शुद्धिकरण इसी से होगा। जैसे शुद्धिकरण बर्तन का करते हैं तो मिट्टी डालते हैं या साबुन डालते हैं या कुछ डिटर्जेंट डाल करके फिर पानी से धोते हैं ना, साफ करते हैं, तो ये भी आत्मा और परमात्मा का चिंतन ये मन का शुद्धिकरण करेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा चिंतन है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये मंत्र कोई नहीं है आपको जो दिया जाएगा कि मंत्र का जाप करो, मान लीजिए ओम नमो शिवाय का मंत्र कहीं किसी ने दिया, पर उस मंत्र का भी राज समझना होगा कि ओम नमो शिवाय माना मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, तो ओम नमो शिवाय मैं शिव को नमस्कार करने वाला मैं कौन। अगर देह अभिमान में होंगे तो ओम नमो शिवाय मंत्र सार्थक होगा ही नहीं, कोई काम का नहीं, कोई फायदा नहीं देगा। पहले आत्मा की स्थिति चाहिए, क्योंकि आत्मिक स्थिति में ही आप शिव को नमः कर सकते हो, अभिमान में होंगे तो नमः क्या करेंगे, नमः करने लिए नम्रता चाहिए, मैं सेठ हूं मैं साहूकार हूं और ओम नमो शिवाय का तो नमः कहां हुआ शिव को, मैं एक आत्मा हूं। और जिस शिव को नमस्कार करते हैं उस शिव की पूरी पहचान चाहिए, उस शिव से संबंध चाहिए, तभी तो मन लगेगा। अब संबंध जोड़ने की विधि बताई, ये तीन बातों की समानता, स्वरूप में समान, धाम समान, गुण समान। अब इसका चिंतन, ये चिंतन आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाएगा, कुछ समानता होगी तभी तो निकट जा सकेंगे। फिर उसके बाद है परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करना, रू रिहान करना, खूब भगवान से बातें करो। फिर तीसरी अवस्था में जैसे बातें की, बहुत मीठी मीठी बातें की, फिर उसी की याद में उसके प्रेम में खो जाओ, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। और फिर चौथी स्थिति है उसकी अनुभूति करने लगते हैं, जिसके प्रेम में खो गए वो प्रेममय हो गए। फिर संकल्प बंद, चिंतन समाप्त, अनुभूति होने लगती है उसके प्रेम की, उसमें खो गए हैं। तो राजयोग की ये चार अवस्थाएं हैं, जिसमें पहले अपने आप को आत्मा निश्चय कर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम रूप और गुणों का चिंतन करना, यही मंत्र है, कोई एक शब्द के रूप में मंत्र नहीं है। मंत्र शब्द भी कहां से निकला, मंत्रणा से, मंत्रणा माना कोई राय कोई सलाह जो मन को दी जाए वो मंत्र है। अब बुद्धि द्वारा मन को सलाह दी जाती है कि तुम पहचानो आत्मा अपने आप को, तुम पहचानो अपने पिता परमात्मा को, पहचानो अपने घर को। तो ये पहला कदम है चिंतन। फिर दूसरे कदम में अंदर ही अंदर उस परम सत्ता परमात्मा से हम वार्तालाप करते, बातें करते, खूब बातें करते हैं। दिल की बातें करो भगवान से, बहुत अच्छी बातें कर सकते हो। ये एक अलग चैप्टर है, अलग विषय है, परमात्मा से कैसे बातें करो। वो हमारे माता पिता, बच्चा अपने माँ बाप से कैसे बातें करता है, अपने टीचर से कैसे बातें करता है, अपने गुरु से कैसे बातें करता है। तो परमात्मा ही हमारे माता पिता, शिक्षक और गुरु है, वही आत्मा का खुदा दोस्त है, दोस्त से कैसे बातें की जाती है। फिर वही आत्मा का साजन है, आत्मा सजनी है, और वही आत्मा परमात्मा, परमात्मा उनका बच्चा भी है, भगवान को बच्चा भी बना सकते हो। माँ बाप कैसे बच्चे से बात करते हैं, तो भगवान से आप ऐसे बात कर सकते हो, माँ बाप बन के। देना है, बच्चे को देना है, लेना भी है तो देना भी है, तभी सच्चा प्यार बनता है, जहाँ लेन देन दोनों है, एक तरफा नहीं है, खाली लेना ही नहीं है। अब उसके लिए हम अनुभव करते हैं कि जब हम परमात्मा से रूरियान करते हैं तो वो सुनता है। कई लोग कहते हैं भगवान तो सुनता ही नहीं है। हम कहते क्यों नहीं सुनता है, इंसान नहीं सुनेगा, भगवान तो जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन सच्ची दिल से करो, न कि ऊपर ऊपर या स्वार्थवश करो। और ये अंतर में निश्चय है कि वो किसी को आपकी बात कहेगा नहीं। इंसान को आप कहेंगे तो हो सकता है आपका सीक्रेट, आपकी गुप्त बात किसी को बता भी दे, आपको धोखा भी दे दे, आप उसको को किसी को बताना नहीं और वो बता दे। परमात्मा किसी को नहीं बताएगा, वो अपने तक ही रखेगा। इसी प्रकार उन वो सदा हम उनसे संबंध रखते हैं तो भय मुक्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परमात्मा की छत्र छाया हमारे सिर पर है, इसलिए भय मुक्त हो जाते हैं, भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। फिर हम उस पर इतना विश्वास रखते हैं। विश्वास एक बहुत ऊंची चीज है, पर अंधविश्वास नहीं, विवेक के साथ विश्वास है। और साथ में वो सुरक्षित हम महसूस करते हैं उनकी स्मृति में अपने आप को, और साथ साथ वो शक्ति का भी अनुभव करते। इसका बहुत विस्तार है, आप सेवा केंद्रों पर जाकर के इसको अनुभव कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम महसूस करते हैं जैसे आत्मा परमात्मा के गुणों में अपने आप को एकाग्र कर लेती है। हम ये नहीं कहते हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं, शिव पिता आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, हूँ मैं। और हूँ जैसे ही कहा, जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, खो गई। इसी को शास्त्रों में कह दिया आत्मा परमात्मा में समा जाती। समाना कोई स्थूल बात नहीं है कि ज्योति ज्योत में समा गई तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा उस ज्योति का जो समा गई, लेकिन आत्मा सदा ही है, अस्तित्व उसका समाप्त नहीं होता, किसी में वो समाती नहीं है, पर परमात्मा के प्यार में जरूर समा जाती है, उनके गुणों में जरूर समा जाती है। और इसी को हम कहते हैं एकाग्र होना, एक एक गुण में समा जाओ, जैसे बूंद सागर में समा जाता। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो जाओ, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो जाओ। और इसी की अनुभूति हमें क्या होगी कि हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा। पहले विचार सागर मंथन करने से मन का शुद्धिकरण होता है, फिर आत्मा का भी शुद्धिकरण होने लगता है, क्योंकि ये योग की अग्नि पापों को भस्म करती है। और इसी शुद्धिकरण के आधार से हम महसूस करते हैं कि जो परमात्मा के गुण आत्मा में समाते जाते, वो प्रवाहित होने लगते हैं। और इसी को भक्तों ने, शास्त्रों ने कह दिया आत्मा परमात्मा बन जाती है। आत्मा कोई परमात्मा बन नहीं सकती, लेकिन परमात्मा के सारे गुण आत्मा में प्रवाहित हो जाते हैं। जैसे आत्मा जैसे कोई सैचुरेटेड हो जाती है उन गुणों में, अपने गुणों में वो स्वरूप स्वरूप बन जाती है और उसी के आधार से हम महसूस करते कि आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है अंदर, वो आत्म सशक्तिकरण आ जाता है। जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, आपकी मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हो तो पावर हाउस से चार्ज किया, तो परमात्मा पावर हाउस से हम राजयोग के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं और इसी के आधार से हम बहुत बड़ा परिवर्तन खुद में महसूस करते हैं। क्योंकि ज्ञान आत्मा का मिला, फिर चिंतन करते हैं, फिर निरीक्षण भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, फिर संयम भी करते हैं, फिर उसके बाद उसका बोध होता है कि मैं तो सचमुच कितनी शुद्ध आत्मा हूँ, कितनी सुंदर आत्मा हूँ, और उसी से परिवर्तन जीवन में आता है। और जैसे ये परिवर्तन जीवन में आया, हम महसूस करते हैं कि हमारा मन परमात्मा में लगने लगता है, क्योंकि शुद्धिकरण भी हो गया, अनेक जन्मों के पाप भस्म होने लगते हैं। ये मन के अंदर जो शिकायत है, मन नहीं लगता, वो मन इतना लगने लगता है जो और कहीं मन जाता ही नहीं। जैसे किसी ने कोई मिठास चख लिया हो तो उसके बाद कितना भी कोई स्वादिष्ट वो चीज हो, वो स्वादिष्ट चीज स्वादिष्ट लगेगी नहीं, क्योंकि मिठास का सुख मुख पर है। तो परमात्मा की याद उस मिठास की तरह है, वो रस आपने ले लिया तो बाकी सब जो इंद्रियों के रस है वो फीके लगेंगे, ये अनुभव करके देखो। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे। सीधा बैठेंगे और कैसे मन को एक परमात्मा में लगाएंगे, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देगा कि अपने मन को एक परमात्मा की याद में टिकाओ, आत्मा परम धाम में पहुंच जाओ, वो अखंड ज्योति का महतत्व मुझ आत्मा का धाम है। तो सीधा बैठें, आंखें बल खुली हो, सामने आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, उस ज्योति बिंदु के तरफ भी ध्यान दे सकते हैं या सामने वाले से भी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हल्के रहें, बिल्कुल रिलैक्स। स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? अंतरात्मा खुद की पहचान देगी, मैं एक आत्मा हूं। एक दिव्य ज्योति हूं। प्रकाश का पुंज हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। इस शरीर से पहले भी मैं आत्मा थी, इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगी, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, अमर आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं। भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक सितारे के समान हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूं। इस बेहद मंच पर हमने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए, अनेक अभिनय किए, अब मुझ आत्मा को वापस जाना है अपने धाम, अपने पिता परमात्मा के पास। पांच तत्वों से पार वह अखंड ज्योति का महतत्व है जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मुझ आत्मा का निज धाम है जहां मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ हूं। रूप में ज्योतिर्बिंदु और गुणों में सिंधु के समान मेरे कल्याणकारी शिव पिता, जो सर्व गुणों के सागर है, अनंत है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, सर्वशक्तिमान है, शांति के परम स्रोत है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप। शांत स्वरूप शांत स्वरूप मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। जैसे बूंद सागर में खो जाती, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान रही हूं। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं, अति सूक्ष्म दिव्य शक्ति हूं, प्रकृति जीत हूं, अति शुद्ध हूं, हल्की हूं, परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा धन्य हो गई, जो पाना था वो सब कुछ पा लिया मैंने। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इसी अनुभूति में खो जाइए और परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव कीजिए। शिव पिता रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। मेरे कल्याणकारी परम पिता है, मेरे सर्व संबंध उनके साथ ही है। प्यारे शिव पिता, आप ही मेरे मात पिता हो, बंधु और सखा हो, स्वामी और सतगुरु हो, अब मैं आत्मा केवल आपको ही याद करूंगी। पिता से शक्ति लेकर भरपूर हो जाए। अब धीरे धीरे वापस लौटे। साकारी जगत में कर्म क्षेत्र पर फिर से कर्म करने के लिए परंतु एक नई जागृति के साथ एक नई लगन के साथ एक नई शक्ति के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।